कहानी मुकंद और रियाज, लेखक नीना सबनानी, अनुवाद वीना शिवपुरी, आवाज मधु अग्रवाल। मुकंद के पास एक क्रिकेट की टोपी थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त रियाज को वह टोपी बहुत पसंद थी। वह उसे पहनना चाहता था, लेकिन मुकंद उसे अपनी टोपी कभी नहीं देता था। जब भी मुकंद अपनी टोपी पहनता तो उसे लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है। एक दिन मुकंद अपनी साइकिल चला रहा था। रियाज उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा था। हड़बड़ी में मुकंद साइकिल से गिर गया और उसकी बांह टूट गई। रियाज मुकंद को एक हड्डी बैठाने वाले के पास ले गया। वह कराची बंदरगाह के पास कीमारी में रहता था। हड्डी बैठाने वाले को सब कीमारी का भैया कहते थे और वह सबका दोस्त था। उसने लड़कों से कोई फीस नहीं ली, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे दान पात्र में डाल दिए। जब मुकंद ठीक हो गया तो वह कैम्बेल स्ट्रीट पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया। उसने रियाज को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन रियाज ने कहा कि वह पढ़ना चाहता है। अचानक एक फौजी गाड़ी आई और सड़क पर रुक गई। उसमें से एक अंग्रेज सिपाही नीचे कूदा। उसने सब लड़कों से अपने अपने घर चले जाने को कहा। मुकंद और रियाज घर जाने के बजाय बाजार चले गए, अपने पसंदीदा नानबाई की दुकान पर। वहां उन्हें बिस्कुट से भरे मीठे बन खाना बहुत अच्छा लगता था। उस रोज भी उन्होंने दुकान से कुछ बन खरीदे और पुस्तकालय चले गए। रविवार को मुकंद गुरुद्वारे के बाहर लोगों के जूतों की देखभाल करता था। वह आने वाले भक्तों को बर्फ का ठंडा पानी भी पिलाता था। यह पानी वह अपने प्यारे दोस्त लाडा राम फालूदा वाले के यहां से लाता था। लाडा राम उससे खुश था क्योंकि मुकंद उसकी मदद करता था। वह मुकंद को खाने के लिए कुल्फी और घर ले जाने के लिए एक बाल्टी पानी भी देता था। घर पर मुकंद अक्सर टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हो जाता और भविष्य के रंग बिरंगे सपनों में खो जाता था। एक दिन मास्टर जी स्कूल नहीं आए। उस रोज मुकंद और उसके दोस्तों ने खूब मस्ती की। थोड़ी देर बाद रियाज वहां आया। उसने मुकंद से जल्दी घर चलने को कहा। उसने बताया कि उनके मुल्क के दो टुकड़े कर दिए गए हैं, भारत और पाकिस्तान। अब मुकंद के परिवार को यहां से जाना होगा, इसलिए मुकंद को जल्दी घर जाकर सामान बांधना चाहिए। मुकंद को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रास्ते में भी अजीब चीजें नजर आईं। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उसे सड़क पर खून भी दिखाई दिया। रियाज कुछ कुर्ते और जिन्ना टोपियां लेकर उनके घर आया। उसने मुकंद से कहा कि वह अपने कपड़े और टोपी बदल ले। मुकंद ने साफ इनकार कर दिया। इस पर मुकंद के पिता ने उसे समझाया कि उनकी जान खतरे में है। अगर वे कुर्ते और जिन्ना टोपी पहन लेंगे तो बाकी लोगों के जैसे ही दिखाई देंगे। इस तरह से वे बगैर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचे चुपचाप कराची से बाहर निकल सकेंगे। रियाज ने उनकी बहुत मदद की, वह गाड़ी चलाना जानता था, हालांकि उस समय उसकी उम्र गाड़ी चलाने के लायक नहीं थी, लेकिन यह मुश्किल की घड़ी थी। रियाज मुकंद और उसके परिवार को बंदरगाह पर ले गया, जहां SS शिराला नामक जहाज उन्हें भारत में बंबई ले जाने के लिए खड़ा था। बंदरगाह पर भी लोगों की भागम भाग हो रही थी, इसलिए उन्हें झटपट जहाज पर सवार होना पड़ा। मुकंद के परिवार ने रियाज को बहुत धन्यवाद दिया। मुकंद रियाज को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, अब वह किसके साथ खेलेगा? मुकंद जहाज की रेलिंग पकड़कर खड़ा था और रियाज को देख रहा था। रियाज ने उसकी ओर देखकर हाथ हिलाया। एकाएक मुकंद ने अपनी पसंदीदा टोपी उतारी और रियाज की तरफ उछाल दी। जहाज रवाना हो गया। दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हुए हाथ हिलाने लगे। वे हाथ हिलाते रहे जब तक कि एक दूसरे की नजरों से ओझल नहीं हो गए। मुकंद और रियाज फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन जब भी मुकंद जिना टोपी को देखता तो उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आ जाती थी। यह सब मुझे मुकंद ने बताया। मुकंद मेरे पिता थे।